नमस्कार श्रोताओ, छिंदवाड़ा ओवरएन से आपका दोस्त योगेश। जिस तरीके से कई राज्यों में 50% के साथ में स्कूलें चालू की गई है और कई बच्चे इससे प्रभावित भी हुए हैं, सरकार ने होटल हो, छात्रावास हो, परिवहन की व्यवस्था पूर्ण तरीके से बहाल नहीं की गई है और इससे कई विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही कई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि कई विशेषज्ञों ने तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए अभिभावक अभी चिंतित है। आज हमारे साथ इसी विषय को लेकर चर्चा करने के लिए डॉक्टर मधुकर जी गायकवाड़ सर जुड़े हुए हैं। गायकवाड़ सर, मोबाइल वाणी पर स्वागत सर आपका। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए अभी स्कूलें जो खोली गई हैं, तो इसको किस तरीके से देख रहे सर आप?
देखिए सर, आपका जो कहना है वो सही है, लेकिन जो स्कूलें खोली गई तो उसमें मतलब 9वीं से ऊपर वाले जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए खोली गई, ना कि छोटे बच्चों के लिए।
जी।
तो जो बड़े बच्चे हैं वो बच्चे होते जो किसी गंतव्य से आना जाना कर सकते, और दूसरी बात यह है कि एक साथ सभी बच्चों को नहीं मिला गया, अल्टरनेटिव चल रहा, मतलब दो दिन एक क्लास फिर दो दिन एक क्लास, इस तरीके से। तो उससे बच्चों की संख्या होगी कम, तो बच्चों में जो आने जाने की जो आप कह रहे हैं रहने की जो दिक्कत है वो ऐसी कोई दिक्कत खड़ी नहीं होगी। और मैंने ये चीज भी देखा कि जो बड़े बच्चे हैं वो परिवहन के माध्यम से अपना गंतव्य तक जाके आ सकते, ऐसा मुझे लग रहा है सर। तो उसमें रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अभी सिर्फ बड़ी क्लासेस खुली है सर, इसमें 9th 10th।
जी सर। सर, कई ग्रामीण अंचलों से 50-50 किलोमीटर जो आदिवासी लोग रहते हैं, तो वहां से भी सर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं 9वीं और 11वीं की क्लास, लेकिन छात्रावास और होटल अभी नहीं खुले हैं। शासन ने इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं जारी की है, इसके कारण बच्चों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या करना चाहेंगे?
सर, किए उन्होंने उसमें ऑनलाइन की भी व्यवस्था रखी, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आ नहीं सकता या बच्चे के परिवार से सहमति नहीं है, तो उसके लिए वो वाली भी सुविधा है यहाँ पे। मतलब वो ऑनलाइन ऑनलाइन शिक्षा भी प्राप्त कर सकता है, उसके लिए आने की अनिवार्यता का नहीं है। लेकिन हाँ, जो बच्चे आ सकते वो ठीक है, जो नहीं आ सकते उसके लिए वो सुविधा है कि वो नहीं भी आ रहे चल जाएगा, ऐसा है।
जी सर। सर, पिछले करीब 1.5 साल से अधिक समय से बच्चे की स्कूलें बंद है और अभी शिक्षा चालू हुई है, इसको शिक्षा व्यवस्था की जो एक कड़ी में जोड़ने के लिए बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट किया जाए ताकि अपने मुख्य धारा में जोड़ सके इसको?
देखिए साहब, सबसे बड़ी बात तो मोटिवेशन यहाँ से मिला कि जैसे स्कूल स्टार्ट हुए तो थोड़ा एक प्रोत्साहन मिला है, बच्चों का आत्मबल बढ़ा है और पढ़ाई शुरू हुई है। क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ कि बच्चे भले ही थोड़ा सा दिक्कतें तो गई है, और दिक्कतें केवल हमारे लिए नहीं गई, सभी के लिए गई है, लेकिन स्कूल चालू होने से और दूसरी चीज ट्यूशन क्लासेस चालू होने से पढ़ाई का एक माहौल बनते जा रहा है, और ऐसा सकारात्मक पक्ष बनते जा रहा है कि बच्चों में जैसे जो डर मतलब बना था या हो रहा था कि भाई तीसरी लहर आएगी ऐसा हो गया। लेकिन आपको शायद पता होगा कि 67 जो सर्वे आया है उसमें 67% ऐसे बच्चे भी है कि जो तीसरी लहर से प्रभावित होंगे ही नहीं, ऑलरेडी उनमें वो जो रोग के खिलाफ लड़ने की क्षमता ऑलरेडी पहले से निर्मित हो गई है। तो ये एक बहुत अच्छी भी बात है। और दूसरी बात यह है कि जो बड़े लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन कर ली, क्योंकि हम अभी 50 करोड़ से ऊपर तक वैक्सीनेशन में पहुंच गए, तो उससे ये संक्रमण बढ़ने की जो दर है वो बहुत कम है। हालांकि दक्षिण के राज्य में कुछ मामला सामने आ रहा है, तो उन क्षेत्रों में ज्यादा आ रहा है जहां वैक्सीनेशन कम हुआ है, इसलिए वहां की सरकार ने क्या किया कि एरिया वाइज वैक्सीनेशन की दर को बढ़ा के उसको कंट्रोल करने की प्रक्रिया में लगे हैं, और हम लोग मध्य प्रदेश वाले इस मामले में थोड़े सुरक्षित है सर अभी।
जी सर। सर, क्या ऑनलाइन क्लास जिस तरीके से अब तक कोरोना काल में चल रही थी और इससे कई लोगों को क्या क्या परेशानी आ रही थी, जिसके पास मोबाइल की व्यवस्था नहीं है, किसी के पास कोई टेक्नोलॉजी अन्य साधन नहीं है, तो इनके लिए अभी तक की कोई व्यवस्था शासन ने नहीं की है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर?
हाँ, ये थोड़ी सी हमारी कमी रही है कि शासन वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाए, क्योंकि मैं खुद मेरी जो सिविल सर्विसेज की क्लासेस चलती है तो वहाँ तो बड़े बच्चे आते और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते, तो मैंने ये देखा कि किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास मतलब चार्ज करने के लिए मतलब वो जो बैलेंस डालने के लिए पैसे की दिक्कत है, तो किसी के यहाँ नेटवर्क नहीं आता। दिक्कतें तो है, निश्चित रूप से दिक्कतें हैं, और ये टेक्निकली मतलब इश्यू है और इसका समाधान करने के लिए प्रशासन को बड़े स्तर पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमको भविष्य को देखना पड़ेगा ताकि हम तकनीकी साधनों का विकास करके, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि इस तरह की शिक्षा की उपलब्धता हमको करना पड़े। हालांकि ये कोई मतलब विकल्प नहीं है, आज भी हमारी पारंपरिक शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी मानी जाती है और बच्चों के साथ इंटरेक्शन जो होता है टीचर का वो ज्यादा प्रभावशील होता है और बच्चे उस चीज को समझने में बहुत आसानी महसूस करते हैं।
जी सर, गांव के बच्चों में परिवहन की व्यवस्था बहाल नहीं हुई है, उनको परेशानी आ रही है और कई बच्चों ने पढ़ाई के रुझान को भी कम होते देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में। सर, इसके लिए क्या पहल की जानी चाहिए?
हाँ नहीं, ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और सबसे बड़ी बात क्या हो रहा था कि हमको ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि लोग कह रहे हैं कि किराया बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, तो इसके पीछे एक बड़ा विस्तारित दृष्टिकोण है कि जैसे वैक्सीन हमको फ्री में मिल रही, यदि हमको खरीद के लेना पड़ता तो वो वैक्सीन हमको 1400 रुपया, 1500, 2400 रुपये में लेनी पड़ती, लेकिन सरकार ने निःशुल्क दे के हमको एक सुविधा दी है। अब उसकी भरपाई हमारे पेट्रोल की बढ़ाई करके या और टैक्सेशन बढ़ा के सरकार कर रही है, ये तो सरकार की व्यवस्था का एक सरकार की व्यवस्था की प्रक्रिया होती है। लेकिन हो क्या रहा कि पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने से जो परिवहन है उनका भी किराया बढ़ गया। अब देखिए छोटे छोटे हमारे आसपास के गांव है पंडाखेड़ी, वहां के बच्चा जो चलता है पांडुना तो 50 रुपये, मतलब एक तरफा 50 एक तरफा 50, 100 रुपये। अब बताइए बच्चा यदि 100 रुपये डेली का खर्चा करता है तो महीने के कितना हो जाता है। तो उस हिसाब से कई बच्चे या उनके माता पिता, एक तो अर्थव्यवस्था इतनी उनकी नाजुक हो गई थी कि अब तो वो टिकट का छोड़िए साहब, वो किसी भी शिक्षा पद्धति में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए थोड़ी सी अभी कुछ समय उसको थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। तो ये एक कारण तो है, परिवहन की सुविधा तो थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, लेकिन भविष्य में हो सकता है जब लोगों की ज्यादा आवाज बढ़ जाएगी, लोग आना जाना शुरू कर देंगे, कॉलेजेस शुरू हो जाएंगे, तो बच्चों की संख्या बसों में ज्यादा जाने लगी, तो हो सकता है कि कुछ किराए में, जैसे अभी कई बसेस वाले ने बच्चों से या डेली वालों से आधी टिकट लेते हैं, फिर भी आधी मतलब उनके लिए बहुत हो जाती है, जैसे 50 की जगह 25 ले तो फिर भी उसको 50 रुपये आने जाने में लग रहा है, तो 15 रुपये महीना हो रहा है, तो दिक्कत तो है थोड़ा सा। अब इस दिक्कत के साथ हमको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा और ये जहाँ आर्थिक दिक्कत है वो बहुत बड़ी दिक्कत होती साहब, तो इस वजह से कई बच्चे मैं देखा कि ना वो क्लास लगा पा रहे, ना कोई स्किल डेवलप करने के लिए कहीं बाहर जा पा रहे, पैसे के अभाव की वजह से। इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव तो पड़ा है हमारी शिक्षा व्यवस्था पे और कई बच्चे तो ये भी देखने में आया कि अभी प्राइवेट स्कूलों में फीस का जो मसला है ये बहुत बड़ा इशू बन गया है, तो बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूलों में जा रहे, तो आज सरकारी शिक्षा व्यवस्था पे लोग केंद्रित हो रहे, लेकिन जो सुविधा हमको वहां देनी चाहिए शिक्षा पे वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे शिक्षण संस्थानों की और खास करके जो टीचर्स वर्ग है जो मतलब अच्छे योग्य टीचर होते, लेकिन कई लोग ऐसे भी देखने ना कि पेमेंट लेते हैं लेकिन ठीक से पढ़ाते नहीं, तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है सर शिक्षा में। नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छी है, हम लोग दिल्ली का कॉन्सेप्ट ले ले, दिल्ली में जो सरकारी शिक्षा गवर्नमेंट की तरफ से प्रदान की जाए हम क्यों नहीं दे सकते, हम बाकी खर्चों पे ज्यादा खर्चा करते हैं। अभी देखिए टोक्यो ओलंपिक हुआ तो वहां पे हम लोग केवल 7 पदक लाए, नीरज चोपड़ा ने 1 पदक लिया तो हम बहुत खुश हो रहे, लेकिन उसके अंदर ही इसमें जाएंगे तो आप देखिए हमारी भारत सरकार का जो GDP है उसका 0.01% हम लोग खर्च करते साहब, तो ये स्थिति शिक्षा में भी है, शिक्षा के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहा, हम अनावश्यक अभी देखिए जो नेताओं के जो खर्चे हैं वो इतने लाखों करोड़ों में होते हैं कि हमको इसके ऊपर ध्यान देके खेल पे शिक्षा पे जो बुनियादी स्ट्रक्चर उससे जोर देना पड़ेगा। और अभी जैसे CM राइट का कॉन्सेप्ट आया, जैसे उसमें परिवहन की सुविधा की बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें हर स्तर पे हो तो बहुत अच्छी हम शिक्षा दे सकते, योग्य बच्चे हैं, योग्य टीचर भी है, लेकिन शिक्षकों के ऊपर नियंत्रण की जरूरत, कई लोग पढ़ाते ही नहीं है, पेमेंट लेते हैं, वो खाली पेमेंट लेने के लिए जाते हैं ना कि पढ़ाने के लिए जाते हैं वहाँ। जी सर,
सर जिस तरीके से हमारे जिले में कई स्कूलों की मरम्मत कार्य अब तक पूर्ण नहीं हो पाए हैं और अभी शासन ने स्कूलें चालू करवाई है, साथ ही इनकी व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई पूरी मरम्मत की, और साथ ही जो अपने छिंदवाड़ा जिले में कहीं देखी जाए तो स्कूल में शिक्षकों की कमियां देखी जा रही है, सर इसको किस तरीके से देख रहे हैं?
नहीं, शिक्षकों की कमी का तो रीजन सर एक आप खुद देखिए कि बाकी विषयों को देखो, 2017 के बाद कोई भी भर्ती नहीं हुई है, पिछले 2-3 सालों से जो शिक्षकों की भर्ती हुई है बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, उन लोग को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, कई लोग उस ज्वाइनिंग के चक्कर में उनकी जो अतिथि में जाते थे पढ़ाने वो भी छोड़ दिया, तो उनके साथ आर्थिक संकट पैदा हो गए। संकट तो है सर, और गवर्नमेंट इन सब चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही ये समझ में नहीं आ रहा। बच्चे बहुत सारे ओवर एज होते जा रहे हैं, 2017 के बाद से आज तक वैकेंसी नहीं आई, SI की नहीं आई, पुलिस की नहीं आई। बड़ी एग्जाम की आ रही है तो उसमें बड़ी एग्जाम में शामिल होने वालों की संख्या उतनी नहीं होती जितनी वर्ग 3 वर्ग 4 ये सब हाई ग्रेड की जो परीक्षा होती है उसमें दिक्कत होती है। गवर्नमेंट ध्यान कहाँ दे रही है समझ में नहीं आ रहा हमें।
जी सर,
जी
सर, क्या आपके क्षेत्र में अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के लिए क्या क्या राजी है सर?
नहीं, हमारे यहाँ तो अभी आ रहे हैं, और एक्चुअली क्या होता है कि हमारे यहाँ बड़े बच्चे होते हैं, सब 18 प्लस वाले होते हैं, कोई 20-22 साल के होते, बड़े बच्चे होते हैं, और उनमें थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग भी होती है कि भाई हमको क्लास में कैसे बैठना है, मास्क पहनना है कि नहीं पहनना, सामाजिक दूरी रखना है, कि वो एक समझ होती है। ये थोड़ी सी ये दिक्कत छोटे बच्चों के साथ होती है जिनमें थोड़ा समझ की कमी होती है या वो ये सब चीजों को नहीं समझ पाते, और अपन सिर्फ छोटे को ही नहीं कहे, बड़े बच्चों को भी यदि कहे तो उनमें भी वो स्थिति होती, पर हम लोग को नियंत्रण रखना पड़ता है और उनको बार बार मास्क पहनने के लिए गाइड करना पड़ता है, और उनको कहा है कि भाई टीका लगा कि आप क्लास में आओगे। मैंने तो यहाँ तक ये कहा कि जो टीका लगने के बाद जो प्रमाण पत्र होता है वो भी आपको अपने बैग में रखना है, जब कभी जा चुकी कुछ होती तो अपने पास दिखाने के लिए होना चाहिए, मास्क लगाने के लिए मैं कहता हूँ सबको। तो ये तो मैं अपने स्तर पर सावधानी रखता हूँ।
जी सर, क्या सर वर्तमान में जो स्कूलें जो चालू की गई है उसको सर बच्चों को जो बीते 1.5 साल में जो सिलेबस पढ़ाया होगा या पढ़ने का होगा उसको किस तरीके से अपने जोड़ा जाएगा आगे?
देखिए, मैंने अभी मेरे मेरे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, मैंने उन वहाँ के प्रिंसिपल महोदय से बात की थी, और मैंने उनसे कहा भी था कि सर ठीक है आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, ठीक है ये अपन पूर्ति कर रहे हैं कि हाँ हम पढ़ाई करवा रहे, लेकिन बच्चे का विद्यालय में बैठ के जो अध्ययन होता है, जो इंटरेक्शन होता है, और उसमें जो उसका पर्सनल डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो पा रहा साहब। सिर्फ हम शिक्षा दे रहे हैं, सिर्फ शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उसका जो एक, क्योंकि मैं खुद देखा, मैं अपने बच्चों को लेके जब स्कूल गया, वो शायद 1.5 साल बाद स्कूल गया था, तो जब उसको उतारा ग्राउंड पे तो अपने दोनों हाथ ऊपर करके इतना खुश हो गया था, और खुद वो पूरे टीचर लोग से मिलने गया और सबसे बात की, मतलब देखिए उसको अपने स्कूल के प्रति 1.5 साल का जो गैप आई थी उसको देखने के बाद कितनी खुशी हुई, ये सभी बच्चों के साथ। और सबसे बड़ी बात था स्कूल, अभी मुझे ऐसा लगता है ठीक है तो परिस्थिति ऐसी है, पर स्कूल करना स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बच्चे उनका स्वाभाविक जो स्वभाव है बदलाव आते जा रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, कई बच्चों की मानसिक स्थिति में भी बदलाव आ रहा है, माँ बाप के व्यवहार में भी बदलाव आ रहा है, और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये तो ठीक है, और ये सब हो सकता है कि स्कूल खुल जाए, धीरे धीरे परिस्थितियां बनेगी तो हम लोग करेंगे, लेकिन मैंने वहां के प्राचार्य महोदय से जब बात की तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सर हम लोग इसको रिवाइज करेंगे, अब वो कितना रिवाइज करते हैं, क्योंकि फीस को लेकर तो बड़ी बड़ी बातें हो रही है, बिल्कुल इतना लगेगा उतना लगेगा ऐसा वैसा कर रहे, गवर्नमेंट भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही। मुझे ये भी एक चिंता का पक्ष है कि आप जनता के प्रतिनिधि होकर जनता की बात करते हो कि उन संगठनात्मक व्यवस्थाओं की जो आपको चंदा देते हैं उनकी बात करते हो, क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक की तो सुन ही नहीं रही। फीस का मुद्दा जो है बहुत बड़ा इशू, बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में, यह स्थिति है कि एडमिशन हाउसफुल हो गए, क्योंकि लोगों के पास, कई लोगों के पास पैसे की स्थिति है। अब रही बात ये लोग फीस ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन कितना रिवाइज करवाएंगे, कितना बच्चों को मतलब कोई बच्चे तो ऐसे कि साहब 2 साल में सिर्फ मोबाइल से पढ़ के ही वो क्लास में आगे बढ़ गए, लेकिन उसका जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए। कई बच्चों के साथ जैसे मैंने कहा कर्सिव राइटिंग की जो इंग्लिश की प्रैक्टिस है, फाड़ा है उनका, जो 12 खड़ी का जो फाड़ा होता है, वो सारी बातें तो प्रैक्टिकली होती साहब, वो तो हो ही नहीं रही, खाली वो लोग स्लाइड से पढ़ा देते हैं, मैडम लोग आके पढ़ा देते।